नमस्कार, मैं आपकी फेवरेट आरजे मोनिका लेकर हाजिर हूँ आपका अपना प्रोग्राम सांझी विरासत। एक अच्छी खुशबू वास्तव में यादों और भावनाओं का एक शक्तिशाली सा कॉकटेल है। ऐसा मैं नहीं, ऐसा जेफ्री स्टेप कॉफ कहते हैं। हम बात कर रहे हैं इत्र की। सबसे पहले तो ये जानते हैं कि इत्र क्या है, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई। इत्र यानी अत्तर, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी, ये बेहद दिलचस्प कहानी है। इत्र या अत्तर असल में अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है खुशबू यानी सुगंध। इत्र यानी अत्तर, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी, ये बेहद दिलचस्प कहानी है। इत्र या अत्तर असल में अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है खुशबू यानी सुगंध। भारत में इत्र बनाने का सबसे पहला रिकॉर्ड बृहत संहिता में पाया जाता है, जो छठी शताब्दी के एक खगोल शास्त्री, गणितज्ञ और ज्योतिषी द्वारा लिखा गया था। ये एक विश्वकोश है। इत्र यानी अतर, सुगंधित तेलों का निर्माण फूलों, जड़ी बूटियों और अन्य वनस्पति स्रोतों से सुगंध निकालने का एक अभ्यास है। कुछ अतर लकड़ी की प्रजातियों से भी निकाले जाते हैं। भारत में इत्र काफी प्राचीन है, ये 60,000 वर्ष से अधिक पुराना है। सुगंध और इत्र का उल्लेख हमें पुराने भारतीय महाकाव्य और ग्रंथों में मिलता है। राजा महाराजा अपने दिन की शुरुआत सुगंध से करते थे। अग्नि पुराण के अनुसार 150 से अधिक सुगंधों का उल्लेख मिलता है। विश्व इतिहास में मिस्रवासी प्राचीन विश्व भर में इत्र बनाने के लिए प्रसिद्ध थे। इन्हें अन्य तेलों में मिलाए जाने से पहले पौधों और फूलों से तैयार किया गया था। इसे बाद में एक प्रसिद्ध चिकित्सक अल शेख अल रईस द्वारा परिष्कृत और विकसित किया गया, जिन्होंने एक विशिष्ट प्रकार का सुगंध उत्पादित किया। उन्हें अबी अली अल सना कहा जाता था। वो गुलाब और अन्य पौधों की सुगंध के आसवन की तकनीक के साथ आने वाले पहले लोगों में से एक थे। उनकी खोज एक तरल इत्र तेल और कुचली हुई जड़ी बूटियों का मिश्रण हुआ करता था, जहां उन्होंने पहली बार गुलाब के साथ प्रयोग किया। गुलाब जल बनाने के बाद उनकी लोकप्रियता अन्य महाद्वीपों में फैल गई, जो पिछले संस्करणों की तुलना में अधिक नाजुक था। उन्होंने कम से कम 62 हृदय संबंधी औषधियां बनाई, जिसमें 40 से ज्यादा इत्र से बनी थी। उनमें ऊद का इत्र, गुलाब का इत्र, केसर का इत्र और चमेली का इत्र शामिल है। वहीं यमन में अतर की एक विशेष किस्म यमनी रानी अरवा अल सुलेही द्वारा पेश की गई थी। इस प्रकार का इत्र पहाड़ी फूलों से तैयार किया जाता था और अरब के राजाओं को उपहार के रूप में दिया जाता था। अतर का उपयोग आमतौर पर मुस्लिम समुदाय और भारतीय उपमहाद्वीप और अरब के मूल निवासियों के बीच कई स्वास्थ्य विकारों के इलाज के लिए किया जाता है और इसका व्यापक रूप से ग्रीक चिकित्सा में भी उपयोग किया जाता था। ऐसे कई स्रोत हैं जो बताते हैं कि भारत में मुगल काल के दौरान इत्र के तेल और सुगंध के उपयोग ने जीवन में एक अच्छा स्वाद जोड़ दिया। अधिकांश मुगल बादशाह और उनकी रानियां इत्र की सुगंध के शौकीन थे और इससे भारत में इत्र की खोज और विकास हुआ। दरबारी इतिहासकार अबुल फजल इब्न मुबारक ने 16वीं शताब्दी के एक विस्तृत दस्तावेज आइन ए अकबरी यानी अकबर का संविधान में मुगल सम्राट अकबर द्वारा इत्र और अगरबत्ती के नियमित उपयोग का वर्णन किया है। इतिहासकारों की माने तो लोकप्रिय मुगल सम्राट अकबर के पास इत्र का एक पूरा विभाग था, ताकि वो और उनके उत्तराधिकारी अपने दिमाग को और शरीर को सुगंधित रख सकें। वैसे तो इत्र की उत्पत्ति के बारे में कई कहानियां हैं, जिनमें मुगल सम्राट जहांगीर भी शामिल हैं, जिन्हें इस उद्योग के पहले संरक्षक के रूप में श्रेय मिलता है, क्योंकि उनकी पत्नी नूरजहां इत्र की पारखी थीं और गुलाब की पंखुड़ियों से सुगंधित पानी का इस्तेमाल करती। जहांगीर के प्रोत्साहन से जल्द ही लोगों ने प्राकृतिक सुगंधों के साथ प्रयोग करना शुरू कर दिया, जिससे इत्र बनाने की संस्कृति शुरू हुई, जो आज भी जारी है। कुछ स्रोतों के अनुसार गुलाब से इत्र के विकास की प्रक्रिया की खोज तत्कालीन मुगल रानी नूरजहां ने की थी। हालांकि ऐतिहासिक शोधकर्ताओं का कहना है कि यह वास्तव में उनकी मां असमत बेगम की खोज थी, जो फारस से थीं। जैस्मिन इत्र हैदराबाद राज्य के निजामों का पसंदीदा इत्र था। मुगल काल के दौरान काफी प्रकार के इत्र का उत्पादन शुरू हो गया जो आज तक जारी है। इत्र के तेलों के पहले प्रशंसकों में से कुछ भारत के मुगल सरदार थे। 18वीं शताब्दी में मुगल वंश के पतन के बाद नवाबों ने अवध पर शासन किया और इसके शासक बने। दिवंगत नवाब वाजिद अली शाह को काफी ज्यादा पसंद थे इत्र और उन्होंने हिना यानी मेहंदी के इत्र की शुरुआत की, ऐसा माना जाता है। इत्र का इतिहास भारत में उत्तर प्रदेश के एक छोटे से शहर कन्नौज के इतिहास से काफी हद तक जुड़ा हुआ है। यह शहर प्राचीन काल से मुगल काल और अवध रियासा तक इत्रा की विरासत से जुड़ा हुआ है। कन्नौज के इत्र की एक लंबी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि रही है और कन्नौज में हजारों वर्षों से इत्र का कारोबार होता आ रहा है। कन्नौज में इत्र उत्पादन की प्रमुख भूमिका के कारण शहर को भारत की इत्र राजधानी यानी परफ्यूम कैपिटल ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता है और कन्नौज भारत के लिए वही है जो ग्रासे फ्रांस के लिए है। क्षेत्र के एक विशेषज्ञ का कहना है, कन्नौज हजारों वर्षों से देश का सुगंधित शहर रहा है। ये शहर मुगल काल से पहले भी प्राकृतिक इत्र के लिए जाना जाता था, जब चंदन, कस्तूरी, गुलाब, कपूर, केसर आदि जैसे सुगंधित वनस्पति पदार्थों का उपयोग प्राकृतिक सुगंध निकालने के लिए किया जाता था। मुगल काल के भारत के दौरान इन प्राकृतिक जैविक अत्रों की और अधिक खोज और प्रयोग किया जाने लगा। कन्नौज इट्टी को बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार संबंधित पहलुओं पर समझौते यानी ट्रिप्स के भौगोलिक संकेत यानी GI के तहत संरक्षित किया गया है। इसे भारत सरकार के GI अधिनियम यानी GI टैग 1999 के आइटम 157 में कन्नौज परफ्यूम के रूप में सूचीबद्ध किया गया है और पेटेंट डिजाइन और ट्रेडमार्क महानियंत्रक द्वारा पंजीकृत भी किया गया है। परंपरागत रूप से पूर्वी दुनिया में अपने मेहमानों को प्रस्थान के समय इत्र देना कुलीनों की एक प्रथा रही है। पुनरावृत्ति पारंपरिक रूप से अलंकृत छोटी क्रिस्टल कट बोतलों में दी जाती है जिन्हें इटार्डन कहा जाता है यानी इतरदान। अपने मेहमानों को खुशबू देने की यह परंपरा पूर्वी दुनिया के कई हिस्सों में आज भी जारी है। इत्र और आवश्यक तेल बनाने के पारंपरिक तरीके अभी भी कन्नौज में फलते फूलते हैं और शिल्पकारों और इत्र निर्माताओं द्वारा इन्हें प्रेम पूर्वक संरक्षित किया जाता है। इत्र और आवश्यक तेल बनाने के पारंपरिक तरीके अभी भी कन्नौज में फलते फूलते हैं और शिल्पकारों और इत्र निर्माताओं द्वारा इन्हें प्रेम पूर्वक संरक्षित किया जाता है। यह परंपरा पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। फूलों के लिए इत्र तेल का उत्पादन आम तौर पर दूर दराज के इलाकों में किया जाता है क्योंकि फूलों को पौधों से तोड़ने के बाद जल्द से जल्द संसाधित करने की आवश्यकता होती है। विभिन्न प्रकार के अत्तर तेलों के उत्पादन के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण हल्के और कुशल हैं। पारंपरिक इत्र बनाने के लिए आम तौर पर यही उपयोग किए जाते हैं और इनका जो संयोजन है वो बहुत ही सरल तरीके से किया जाता है, प्राचीन कला को सहेजने के लिए, उस विरासत को बचाने के लिए। इससे पहले कि हम कन्नौज में इत्र बनने के बारे में जाने, आइए जानते हैं कि कन्नौज का अपना इतिहास क्या रहा है। कन्नौज भारत की सबसे प्राचीन जगहों में से एक जिसमें समृद्ध पुरातात्विक और सांस्कृतिक विरासत है। इस स्थान का प्राचीन नाम कान्यकुब्ज या महोदी है। वाल्मीकि रामायण, महाभारत और पुराण के अनुसार बाद में कन्याकुज्जा को कन्नौज के रूप में परिवर्तित किया गया था जो कि वर्तमान का नाम है। अब कन्नौज के वर्तमान जिले द्वारा कवर क्षेत्र के प्रारंभिक इतिहास दूर प्राचीन पुरातनता में वापस चला जाता है। कांस्य युग के दौरान कई पूर्व ऐतिहासिक हथियार और उपकरण यहाँ मिले थे। पत्थर की मूर्तियों की बड़ी संख्या यहाँ पाई जाती है। कन्नौज मूर्तिकला में महारथी है। इस क्षेत्र में आर्यन बसे हुए थे जो कुरुस के करीबी मित्र थे। महाभारत युद्ध के अंत तक प्राचीन काल से जिला का पारंपरिक इतिहास पुराणों और महाभारत से प्राप्त होता है। अमावासु ने एक राज्य की स्थापना की जिसकी राजधानी बाद में कान्यकुब्ज थी यानी अभी वर्तमान का कन्नौज। जहानू एक शक्तिशाली राजा थे क्योंकि गंगा नदी के नाम पर उन्हें जानेहू के नाम पर रखा गया था। महाभारत काल के दौरान ये क्षेत्र महान प्रतिष्ठा में उदय हुआ। कंपिला दक्षिण पंचला की राजधानी थी और यहाँ द्रौपदी के प्रसिद्ध स्वयंवर भी हुआ था। पूरे क्षेत्र के लिए प्रयोग किया जाने वाला नाम पंचला, जिसमें से कंजिल मुख्य शहर था, तब तक वो दक्षिण पंचलाई कहलाता था। अगर हम बात करें कन्नौज की, तो कन्नौज एक समय पर हर्षवर्धन के राज्य की राजधानी भी रहा है। कन्नौज और इत्र एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जब भी आप कन्नौज जाएंगे तो वहाँ की हर गली आपको महकती हुई दिखाई देगी। ऐसा बताया जाता है कि इत्र भारत में मुगलों के समय में आया। उस वक्त मुगल बादशाहों के लिए मिडिल ईस्ट से आया करता था। बाद में ये कन्नौज में बनाया जाने लगा। अपने इत्र के व्यापार के लिए कन्नौज शहर देश भर में जाना जाता है। सदियों से कन्नौज में इत्र बनाने वालों ने तरल सोना बनाने के लिए अपनी कीमियागिरी का काम किया है, और तब से लेकर आज तक इत्र के इस शहर ने इत्र बनाने की इस प्राचीन कला को सहेज कर संवार कर रखा हुआ है। यूं तो कन्नौज में 300 से ज्यादा इत्र घर हैं, मगर अफसोस इनमें से कई अब टूट फूट रहे हैं। जैसे ही आप इत्र के शहर कन्नौज में कदम रखेंगे, आपको चारों ओर खुशबू ही खुशबू नजर आएगी। और खास बात तो ये है कि कन्नौज में आज भी प्राचीन विधि से ही इत्र बनाया जाता है। पहली नजर में ऐसा लगता है कि पूरा का पूरा कन्नौज किसी न किसी रूप में इत्र बनाने के काम में लगा हुआ है, और यहाँ के करीब 80% बाशिंदों की रोजी रोटी का साधन इत्र की सुगंध ही। यहाँ जब आप जाएंगे तो आपको लोग ताजे तोड़े गए फूलों की छटाई करते, सही माप में पानी और तेल मिलाते, खास तापमान तय करते और अर्क इकट्ठा करते नजर आएंगे। यहाँ की जैस्मिन, खस, कस्तूरी, चंदन, मिट्टी इत्र काफी ज्यादा मशहूर है। ये इत्र USA, UK, दुबई, सऊदी अरब, फ्रांस, ओमान, सिंगापुर समेत कई अन्य देशों में एक्सपोर्ट होते हैं। अपनी शुद्ध इत्र के व्यापार के लिए कन्नौज सदियों से प्रसिद्ध रहा है। लगभग 600 साल से यहाँ इत्र बनाने के लिए देसी तकनीक का ही इस्तेमाल किया जाता है। इतिहासकार बताते हैं कि कन्नौज को इत्र बनाने का ये नुस्खा फारसी कारीगरों से मिला था, जिन्हें मुगल बेगम नूरजहां ने बुलाया था। इन फारसी कारीगरों को नूरजहां ने गुलाब के फूलों से बनने वाले एक विशेष प्रकार के इत्र के निर्माण के लिए बुलवाया था। तब से लेकर आज तक कन्नौज में उसी तरीके से इत्र का निर्माण होता आ रहा है। कन्नौज के परंपरागत इत्र की महक, जिसमें गुलाब, बेला, केवड़ा, चंपा, मेहंदी, गेंदा, चमेली, इन सब को पसंद करने वालों की कमी नहीं है। इसके अलावा कुछ खास किस्म के इत्र जैसे शमामा, मास्क अंबर, शमामा तूल अंबर, ये सब भी हैं। सबसे कीमती इत्र अदर ऊद है, जिसे असम की एक विशेष लकड़ी आसाम कीट से बनाते हैं। आज के इस आधुनिक दौर में भी यहाँ इत्र को भट्टियों में ही बनाते हैं। गुलाब, बेला, चमेली, गेंदा, जिस भी फूल का इत्र तैयार करना होता है, उसकी पंखुड़ियों को तांबे के एक बड़े से बर्तन में डाला जाता है और पानी भरकर उसे भट्टी पर चढ़ाया जाता है। भट्टी पर पानी को लगातार गर्म किया जाता है, जिससे निकलने वाली भाप पात्र, जिसे भपका कहते हैं, फूलों की पंखुड़ियों को गर्म करती है। पंखुड़ियों को गर्म करके इनसे खुशबू या तेल निकाला जाता है। पात्र से निकला तेल एक लकड़ी से पार होते हुए एक सुराही के आकार के बर्तन में इकट्ठा कर लिया जाता है। ये सारी प्रक्रिया डिस्टिलेशन प्रोसेस यानी आसवन विधि के आधार पर की जाती है। इसके बाद इस तेल को प्रोसेस करके पैकिंग की जाती है। सूर्योदय से पहले लोग गंगा किनारे अपने फूलों के खेत में पहुंच जाते हैं। बेतरतीब ढंग से लगाए गए दमिश्क गुलाब के चारों ओर चक्कर लगाते हुए ताजे ताजे फूलों की जांच करते हैं। शीर्ष पर लगे ताजे फूलों को तोड़ते हैं और हल्के ताजे फूलों की पंखुड़ियों को अपने कंधों पर लटके जूट के बोरे में इकट्ठा कर लेते। जब तक सूरज की रोशनी की पहली किरणें नदी पर पड़ती हैं, उसी बीच कुछ लोग बड़े एहतियात के साथ एकत्रित फूलों को अपने वाहनों से इत्र घर तक पहुँचाना शुरू कर देते हैं। इसके बाद फूलों के बंडल को ध्यान से गोदाम में उतारा जाता है, जो एक खुली हवा वाला पत्थर का आंगन होता है, जो डिस्टिलरी का काम करता है। फिर फूलों की पंखुड़ियों को एक बल्ब नुमा तांबे के स्टिल में इकट्ठा कर दिया जाता है और उसके ऊपर ताजा पानी डालते हैं। ढक्कन लगाने से पहले रिम्स को मिट्टी और कपास के घोल से सील करते हैं, जो सख्त हो जाता है और एक टाइट ठोस सील का काम करता है। जब फूलों का मिश्रण उबलना शुरू हो जाता है तो भाप बांस की ईख के माध्यम से चंदन के तेल वाले तांबे के पात्र में चली जाती है, जो आसानी से गुलाब संतृप्त वाष्प को अवशोषित कर लेती है। 50 वर्षीय राम सिंह इत्र के कारोबार में अच्छा अनुभव रखते हैं और उनके अनुसार इत्र बनने में समय लगता है। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान चार चीजें काफी महत्वपूर्ण होती हैं: सही तापमान, सही माप, सही समय और सटीक प्रक्रिया। इत्र बनाने के लिए पारंपरिक उपकरण का इस्तेमाल होता है। ये प्रक्रिया तांबे की स्टील में की जाती है, जिसे डेक कहते हैं। सदियों से पारंपरिक तरीकों का उपयोग करके कार्बनिक सुगंध तेलों के उत्पादन में डिगरी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। डिग तांबे की धातु से बने होते हैं, जिनमें एक या दो रिसीवर के कनेक्शन के लिए छेद किया जाता है। भपका, जिसे रिसीवर कहा जाता है, तांबे से बना होता है और इसमें लंबी गर्दन के साथ गोल आकार होता है, जो कुछ कुछ सुराही नुमा होता है। इत्र बनाने की प्रक्रिया के दौरान रिसीवर को चोंगा के माध्यम से डिग्री से जोड़ा जाता है और ये बहुत आवश्यक। स्थानीय भाषा में ये भपका के नाम से प्रचलित है और या कंडेंसर का भी काम करता है। पारंपरिक भट्टी, जो अतर शिल्पकारों द्वारा उपयोग की जाती है, ईंट और मिट्टी से बनी होती है। आमतौर पर प्रक्रिया के दौरान हीटिंग के लिए लकड़ी या कोयले का उपयोग किया जाता है। ठंडे पानी की टंकी वो स्थान है जहाँ भपका या रिसीवर रखा जाता है और इसका उद्देश्य औसत को डिग्री से ठंडा करना होता है। लोकल भाषा में इसे गच्ची कहा जाता है। फिर आती है कुप्पी, यानी चमड़े की वो बोतलें। कुप्पी जानवरों के चमड़े से बनी बोतल होती है। इन बोतलों का उपयोग इत्र से नमी हटाने के लिए किया जाता है। अमूमन ऊंट की खाल से तैयार बोतलों का इस्तेमाल ज्यादा किया जाता है। इस पूरे प्रक्रिया के दौरान इत्र निर्माता अपने पैरों की उंगलियों पर खड़े रहते हैं, स्टिल और बर्तन के बीच फिरते घूमते, अपने हाथों से पानी का परीक्षण करते और भाप की फुसफुसाहट को सुनते हैं, ताकि उन्हें ये पता चल सके कि आग में और लकड़ी डालनी है या नहीं। इसके उपरांत वांछित क्षमता प्राप्त करने के लिए प्रक्रिया को अगले दिन गुलाब की पंखुड़ियों के एक नए बैच के साथ दोहराया जाता है। एक बार ये हो जाने के बाद गुलाब के इत्र को ऊंट की खाल वाली बोतलों में कई महीनों तक रखा जाता है, जो नमी को सोख लेता है। तैयार गुलाब का इत्र तरल सोने के समान है। कोई गेज नहीं, कोई मीटर नहीं, कोई बिजली नहीं, और इत्र के कारोबारी गर्व से कहते हैं कि उनके साधारण पारंपरिक सामान से बेहद अच्छे क्वालिटी के इत्र बनाए जाते हैं। अगर हम बात करें मुख्य इत्र के गुड़ की, तो इत्र में कई सारे गुड़ पाए जाते हैं। कुछ इत्र गर्मी में अगर इस्तेमाल किए जाएं तो हमें शीतलता देते हैं, वहीं ठंडक यानी सर्द के मौसम के हिसाब से अलग प्रकार और मसालों को मिला करके इत्र बनाया जाता है। प्राकृतिक कस्तूरी को आमतौर पर दवाओं और कन्फेक्शनरी के साथ मिलाया जाता है। कथित औषधीय लाभ विषरोधी के रूप में काम करने और अंग को मजबूत करने तक इत्र निर्माता, चिकित्सक, कीमियागर और तेल व्यापारी के बीच ऊद का व्यापार और संरक्षण किया जाता है। दावा किए गए कुछ औषधीय उपयोगों में दर्द में कमी और तनाव से राहत ये शामिल है। चंदन का तेल ध्यान के दौरान अपने प्रतिष्ठित शांत प्रभाव के लिए धूप में लोकप्रिय रूप से उपयोग किया जाता है। गुलाब का तेल गुलाब की कुचली हुई पंखुड़ियों को भाप आसवन द्वारा प्राप्त किया जाता है, जिसका एक उत्पाद गुलाब जल है। यानी जो गुलाब जल आप यूज करते हैं वो सिर्फ एक बाय प्रोडक्ट है इत्र बनाने की पूरी परंपरा में। गुलाब के तेल का उपयोग प्राचीन काल से इत्र में, साथ ही इमोलियंस में और एक सूजन रोधी एजेंट के रूप में किया जाता है। चमेली के फूलों से प्राप्त चमेली के तेल में एक शक्तिशाली पुष्प सुगंध होती है और ये इत्र सबसे ज्यादा लोकप्रिय और महंगा घटक है। कन्नौज के इत्र की एक और खास बात है, उन सब में सबसे खास है कन्नौज की मिट्टी में भी खुशबू है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मिट्टी के इत्र की। सोचकर आप जरा हैरान होंगे, मिट्टी का इत्र, जब बारिश की बूंदें जमीन पर पड़ती हैं, तो एक बेहतरीन सी खुशबू हम सबको अपनी आगोश में कर लेती है। वो खुशबू है बारिश की खुशबू, बारिश वाली मिट्टी की खुशबू। मिट्टी का इत्र उन सभी में सबसे खास है जो धरती की सुगंध विशेष रूप से पेट्रिकोर सूखी धरती पर पहली बारिश की सुगंध को उद्घाटित करता है। ये एक ऐसी खुशबू है जो बारिश से भरे भूरे आसमान, ठंडी उपजाऊ मिट्टी और गर्म चाय रखने के लिए धुले हुए कुल्हड़ या मिट्टी के कप को याद दिलाती है। 1964 में नेचर पत्रिका में प्रकाशित बियर और थॉमस ने बारिश से आने वाली खुशबू के लिए एक नाम प्रस्तावित किया था। उन्होंने इसे पेट्रिकोर कहा था, जो ग्रीक शब्द पेट्रा यानी रॉक और इकोर का मिश्रण है, जो ग्रीक पौराणिक कथाओं में देवताओं का खून है। लेकिन वैज्ञानिकों ने स्वीकार किया कि वे तूफानी गंध की पहचान करने वाले पहले व्यक्ति नहीं थे, वे इसे निकालने वाले पहले व्यक्ति भी नहीं थे। वास्तव में जिसे उन्होंने पेट्रिकोर नाम दिया वह पहले से ही कन्नौज में उत्पादित एक विशिष्ट सुगंध थी। सूखी मिट्टी से निकाला गया और प्राचीन तकनीकों से आसुत किया गया। इसे मिट्टी का इत्र यानी पृथ्वी इत्र यानी पेट्रिकोर इत्र, इन सभी नामों से जाना जाता है। फैज अहमद फैज की मशहूर नज्म है, चले भी आओ कि गुलशन का कारोबार चले, गुलों में रंग भरे बाद नौ बहार चले। फैज साहब कभी कन्नौज गए या नहीं पता नहीं, लेकिन उत्तर प्रदेश के इस छोटे से शहर की गलियां हमेशा महकती हैं। स्टेशन पहुंचने से पहले ही बेला के खेत भी दिख जाते हैं। उनकी बहुत भीनी सी महक खिड़की वाले सीट पर रस्ते के अंदर आ जाती है। इस शहर को करीब से जानने में बहुत वक्त लगेगा। अगर बात करें कन्नौज की या कन्नौज में बनने वाले इत्र की, तो अक्सर लोग पूछते हैं कन्नौज ही क्यों? तो इसका जवाब है गंगा यमुना, ये दो आब है। मिट्टी गुलाब की खेती के लिए उपयुक्त थी। शुरुआत में जौनपुर जैसे कुछ शहरों में भी ये कारोबार रहा, लेकिन व्यापार की सुविधा और शाही परिवार के संरक्षण के चलते कन्नौज में इसकी बढ़ोतरी होने लगी। आज भी इत्र के कारोबार में लगे परिवारों में से ज्यादातर 4-5 पीढ़ियों से इसमें शामिल हैं। इनके पास पीढ़ियों से चले आ रहे राज हैं और महक बनाने के खास हुनर। इसके अलावा चंदन की लकड़ी से इत्र निकालने के लिए जरूरी लाइसेंस भी। इन राज, हुनर और लाइसेंस का ही एक मिला जुला मिश्रण है। इन्हें सही से इस्तेमाल करने वाले लोग करोड़ों का कारोबार खड़ा कर लेते हैं। मोटे तौर पर इत्र के कारोबार दो तरह से होते हैं, यानी दो तरह के उत्पादकों में बटे होते हैं, एक ऑयल बनाने वाले, दूसरे कंपाउंड बनाने वाले। ऑयल बनाने का काम सीधा है, खस खरीदी, उसे बॉयलर में डाला और स्कूल में पढ़ी गई आसवन क्रिया के व्यवहारिक इस्तेमाल से शीशियों में उतार लिया। हम काफी ज्यादा लोगों से अगर मिले तो वो भी यही कहेंगे, 1902 में भाप का इंजन लगा था, इसी इंजन में कोयले से भाप बनती है जो खस के साथ मिलकर ठंडी होती है, और 250 किलो खस लगाकर उसकी 500 ग्राम रूह 12 घंटे बाद बोतल में कैद कर ली जाती है। एक तरफ खस के ढेर और दूसरी तरफ शीशी में कैद खस को देखकर लगता है कि बोतल में कोई जिन कैद हो या कोई कल्पना हो। इस तरह से भट्टियों में चंदन का तेल भी निकलता है। वैसे इस प्रोसेस की एक खासियत है यह भी कि इनमें से कोई भी वेस्टेज नहीं होता। तेल निकलने के बाद जो बचता है वो सब अगरबत्ती बनाने में काम आ जाता है। एक और बड़ी सी भट्टी में जहाँ ऑयल बनता है तो वहीं दूसरी ओर कंपाउंड बनाने वाले हैं। जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि कंपाउंड में कई सारी महक मिलाकर एक महक बनाई जाती है। अगर आपको लगता है कि इत्र के कारोबार का मतलब सिर्फ गुलाब, चंपा, चमेली की शीशियां बनाना है तो शायद आप गलत सोच रहे हैं। कंपाउंड में तमाम तरीके की महक होती है जो दुनिया के किसी भी प्रोडक्ट में इस्तेमाल की जा सकती है। मसलन देसी घी की महक, पान मसाले की महक, साबुन की महक, इवन की बोरोलीन की भी महक, और पुरानी डार्क चॉकलेट, इरोटिक महक, ये सारी बनती है। कई सारी तो मिलाकर मसालों के साथ परफ्यूम्स में भी बनाई जाती है। अब जाहिर सी बात है कि इन महक के लिए 250 किलो देसी घी नहीं पकाते हैं, मस्क के इत्र के लिए असली कस्तूरी हिरन का शिकार नहीं करते हैं। तमाम अलग अलग महक मिलाकर ये कंपाउंड बनते हैं, और रोजमर्रा की चीजों में पड़ने वाले ये कंपाउंड ही कारोबार का बड़ा हिस्सा है। इन्हें बनाने वाले अपने कंपाउंड के तत्वों के नाम और अनुपात साझा नहीं करते क्योंकि ये सीक्रेट है। चूंकि इनकी मांग असीमित है और सप्लाई पर एक सीमित वर्ग का आधिपत्य है, तो आगे का गणित आप खुद जोड़ सकते हैं कि ये कारोबार कितना महंगा है और कितना अनोखा है। हम जब मिट्टी के इत्र की बात कर रहे थे, यानी पेट्रिकोर वाले इत्र, इसकी महक के लिए अंग्रेजी में जो नाम है ना पेट्रिकोर, जमीन में रहने वाले बैक्टीरिया पानी के साथ जियोस्मिन नाम कंपाउंड बनाते हैं, इसी महक को हिंदी में सोंधी सी खुशबू कहते हैं। वो बारिश वाली खुशबू, ये खुशबू सबको बहुत पसंद है क्योंकि करोड़ों साल के इवोल्यूशन ने हमारे दिमाग को इसे पानी और जीवन के साथ जोड़ना सिखा दिया है। इसके अलावा दो और इत्र हैं, एक शमामा और दूसरा ऊद। ऊद आसाम के जंगलों में मिलने वाली एक लकड़ी है जो बेहद दुर्लभ है और महंगी होती है, इसे वुड ऑफ गॉड भी कहते हैं। 5 लाख से 70 लाख रुपए किलो के बीच की इस लकड़ी से ऊद नाम का इत्र बनता है। इनके अलावा सबसे रोचक इत्र है शमामा। शमामा तेज या हल्की महक के आधार पर अलग अलग नंबर का होता है। शमामा मसालों से बनने वाला इत्र है, इसमें दालचीनी और जायफल जैसे तमाम मसाले पड़ते हैं। इसकी खासियत है कि इसे लगाकर सर्दियों में गर्माहट का एहसास होता है। इत्र के पुराने जानकार सर्दियों में शमामा की सिफारिश करते हैं और गर्मियों में इससे बचने की सलाह भी देते हैं। यदि आप हमारे देश में इत्र बनाने के इतिहास का पता लगाएं, तो ये जो गिरावट अभी महसूस हो रही है वो दुर्भाग्यपूर्ण लगती है। परफ्यूमरी एक कौशल था जो पूरे उत्तर भारत में लोकप्रिय था, जो अब सिमट कर केवल केवल कन्नौज तक ही रह गया है, और जहाँ ये तेजी से खराब हो रहा है, काफी ज्यादा गिरावट आ रही है। मसूरी फ्रेग्रेंस एंड फ्लावर्स इंस्टीट्यूट के संस्थापक डॉक्टर ज्योति मारवा कहती हैं, बहुत से लोग नहीं जानते कि कन्नौज सिर्फ एक शहर नहीं था बल्कि पूरा उत्तर भारत था, जिसे 600 ईस्वी के आसपास राजा हर्षवर्धन के अधीन कन्नौज राज्य कहा जाता था। आज भी हम जौनपुर, बनारस और गाजीपुर की खुशबू फैक्ट्रियों में पुराने जमाने की खुशबू बनाने के अवशेष देख सकते हैं जो पहले इस साम्राज्य का हिस्सा थे। वास्तव में आसवन और भंडारण के लिए सुगंध बनाने वाली सामग्री की पहली खोज सिंधु घाटी सभ्यता में हुई थी। मारवा बताते हैं कि शुरुआत में सुगंधित जल भगवान को अर्पित करने के लिए बनाया जाता था। कन्नौज का इतिहास में बार बार उल्लेख किया गया है, मगर क्या हुआ जो अब कन्नौज में इत्र बनाने वालों में ये भारी गिरावट देखी जा रही है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि सुगंध हमेशा भारतीय संस्कृति का एक बड़ा हिस्सा रही है, चाहे वो इत्र हो, मसाले हो, धूप हो या अगरबत्ती हो। हमारे देश में चंदन, चमेली, वेटवर, गुलाब, जटामासी जैसे पौधे भी पाए जाते हैं जो अक्सर सुगंध का आधार बनते हैं, लेकिन हम प्राकृतिक संसाधनों और कौशल दोनों को संरक्षित करने में विफल हो रहे हैं, चाहे वो नीतियों की कमी के कारण हो या खराब ग्राहक के कारण। या चंदन का मामला ही ले लीजिए, जिसे प्राप्त करना लगभग असंभव है। पहले चंदन की कुछ भट्टियां थी, जब या वीरप्पन, यानी वो भारतीय डाकू जो आपने कई सारी मूवीज में देखा होगा, वीरप्पन के पास से आता था, लेकिन उसके मारे जाने के बाद मुश्किल से कोई स्रोत बचा है। अब दूसरा प्राकृतिक संसाधन जो तेजी से घट रहा है वो है जटामासी, जो सुगंध में और आयुर्वेद में शामक के रूप में उपयोग किए जाने वाला एक बहुमूल्य घटक है। हमने ऊपरी हिमालय में इसका लगभग 60-70% भंडार केवल इसलिए खो दिया क्योंकि इसे ठीक से संरक्षित नहीं किया गया। जहां तक कन्नौज के इत्र की बात है, पिछले एक दशक में शुद्ध इत्र और एसेंस की गुणवत्ता में भारी गिरावट देखी गई है, क्योंकि सिंथेटिक्स की बढ़ती मांग ने पारंपरिक इत्र को बाहर कर दिया है। अब आपको ही देख लीजिए, आप इत्र की जगह अल्कोहल बेस्ड परफ्यूम्स का इस्तेमाल करते हैं और आपको लगता है ये सबसे नायाब है, एक्सपेंसिव परफ्यूम्स, ब्रांडेड परफ्यूम्स, मगर इससे कहीं ज्यादा अच्छे होते हैं इत्र। अगर मेरी माने तो अल्कोहल बेस्ड परफ्यूम्स का इस्तेमाल ना करते हुए आप चाहें तो आप ताजे, ऑर्गेनिक, अच्छे शुद्ध इत्र का इस्तेमाल कर सकते हैं। साद सिद्दीकी, जिनका मुंबई में आउटलेट के साथ साथ कन्नौज में विनिर्माण व्यवसाय है, उन्होंने पहली बार शुद्ध एसेंस की गिरती मांग को देखा। फूलों और आवश्यक तेलों से इत्र प्राप्त करते हैं लोग, शून्य सिंथेटिक्स, लेकिन पिछले 10 वर्षों में सस्ते विकल्पों की मांग बढ़ गई है। स्वाभाविक रूप से इससे प्रदूषण को बढ़ावा मिला है। नागरमोथा तेल का मामला ले लीजिए, जिसमें हम विशेषज्ञ हैं। वो बताते हैं कि निर्माता 75% शुद्ध तेल को 25% सिंथेटिक्स के साथ मिलाते हैं, जो किसी कारण से प्रयोगशाला परीक्षणों में दिखाई नहीं देता। सिंथेटिक फॉर्म 18,000 प्रति किलोग्राम की तुलना में 100 से 200 किलोग्राम है, इसलिए जब 25% एसेंस को सस्ते सिंथेटिक से बदल दिया जाता है तो कीमत में भारी गिरावट आता है जिसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। वरुण टंडन के मुताबिक, जिनका परिवार लगभग 2 शताब्दियों से पारंपरिक इत्र बनाने के व्यवसाय में है, बूंद नाम का इत्र लॉन्च किया जो इत्र बनाने के पारंपरिक शिल्प को संरक्षित और लोकप्रिय बनाने की उम्मीद करता है। उदारीकरण से पहले लोग अभी भी शुद्ध इत्र का बहुत उपयोग करते क्योंकि प्रतिस्पर्धा कम थी, लेकिन आज इत्र निर्माता को न केवल उच्च स्तरीय सुगंधों के साथ प्रतिस्पर्धा करनी पड़ रही है बल्कि 200 रुपए के डिओड्रेंट के साथ भी प्रतिस्पर्धा करनी पड़ रही है। देखिए ना कितना अजीब सा माहौल है इस वक्त का। कहां 1 लीटर इत्र की अगर बात की जाए, 1 लीटर इत्र की कीमत लाखों रुपए में आती है, वहीं 200 रुपए के एक डिओड्रेंट के साथ तुलना की जा रही है। इसके अतिरिक्त उनका कहना है कि व्यवसाय मालिकों ने केवल B2B पहलू पर ध्यान केंद्रित किया और उपभोक्ता को सीधे बेचने के लिए अपग्रेड नहीं किया। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि इनमें से बहुत से लोगों ने ये कौशल अपने पूर्वजों से सीखा, लेकिन वे इसे अपने बच्चों को नहीं सिखाना चाहते हैं। पारंपरिक इत्र निर्माताओं के कई परिवारों में या इस शिल्प में पारंगत आखिरी पीढ़ी है। यद्यपि कन्नौज सभी प्रकार के सुगंधित तत्वों के लिए लोकप्रिय है, मिट्टी के इत्र, बारिश के बाद की गीली मिट्टी की सुगंध के रूप में जाने जाने वाला पदार्थ विशेषज्ञ है जिसके बारे में हमने अभी चर्चा की। सुगंधों का उपयोग सौंदर्य प्रसाधन और भोजन दोनों में किया जाता है, इसलिए ये दैनिक आधार पर हमारे उपभोग का हिस्सा है। कई लोग बताते हैं सिंथेटिक्स के साथ सबसे बड़ा फायदा ये है कि उन्हें आसानी से मानकीकृत किया जा सकता है, लेकिन वे फैटलेट्स जैसे अवयव से बनते हैं जिन्हें कैंसरकारी भी माना जाता है। उनके लिए समाधान नीति परिवर्तन के लिए दबाव समूह बनाने में निहित है, ठीक उसी तरह जैसे एकल उपयोग वाले प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने के लिए दबाव समूह बनाए गए और आगे की राह के लिए नई नीतियों की आवश्यकता है। हम एक उपभोक्ता के रूप में महंगी डिजाइनर सुगंध के बजाय प्राकृतिक सुगंध अर्क में निवेश करना शुरू कर सकते हैं। ये हमारी ओर से एक पहल होगी संरक्षित करने वही पारंपरिक तरीके को जो कि अभी तक कन्नौज में सहेजी जाती है, जिसे बनाने में कभी कभी 5 सेंट से भी कम लागत आती, क्योंकि हमारे लिए यह सिर्फ गुणवत्ता में गिरावट या आजीविका की हानि नहीं है बल्कि शिल्प कौशल और विरासत की हानि भी है, और यहाँ हम विरासत को साझा करने ही तो आए हैं। क्या हम ग्राहक बनकर इसे सुरक्षित रख सकते हैं? मेरा मानना है कि शुरुआत करने के लिए ये एक अच्छी पहल होगी। इतनी सारी बातें तो हो गई कन्नौज के बारे में, इत्र के बारे में और कन्नौज के इत्र के बारे में। क्या आप सही तरीका जानते हैं इत्र लगाने का? आइए जानते हैं। इत्र की खुशबू का अनुभव करने का अनुशंसित तरीका है, और वो तरीका है कि इसे प्रत्येक कलाई के अंदर लगाएं और सूखने से पहले अपनी कलाई के अंदर से प्रत्येक ईयर लोब के पीछे थोड़ा सा थपथपा दें। कुछ ही मिनटों में इत्र सूख जाएगा, इसके बाद आपको इसकी मनमोहक खुशबू का अनुभव होगा। आशा है कि अगली बार जब आपको सुगंध महसूस होगी तो ये महज एक सुगंध से कहीं अधिक होगी। ये कला और कहानियों के साथ, इतिहास और विज्ञान की एक चुटकी के साथ, एक प्राकृतिक उपहार के रूप में अधिक सुखद होगी।